सगाई की तैयारियों में 3 दिन पलक झपकते ही बीत गए थे। आहाना और अंतरा ने ही राधिका और अर्पिता को सगाई की शॉपिंग करवाई थी और अक्षय ने माधव को। खैर, सगाई का फंक्शन बस फैमिली के बीच ही होना था। दोनों परिवार बेहद करीबी रिश्तेदारों संग शगुन लेकर निकल चुके थे। माधव और निशांत के दिल में धड़कन सी मची थी और दोनों ही अपनी वाली से मिलने को बेताब थे। इधर राधिका दौड़ भाग में लगी सभी तैयारियां देख रही थी। उसकी दोनों बहनें अपने अपने परिवार संग आ चुकी थी। अर्पिता तैयार हो चुकी थी पर राधिका पंडित जी से कुछ बात कर रही थी। तभी अपने लहंगे को संभालते हुए अर्पिता वहां आई और राधिका की बाँह पकड़ते हुए बोली, दीदी बहुत हो गया आपका, सब तैयारी हो गई है, जो नहीं हुई है वो दी लोग संभाल लेंगे। आप मेरे साथ चलिए, जीजू अपनी फैमिली के साथ आते ही होंगे और अभी तक आप तैयार भी नहीं हुई हैं। क्या सोचेंगे वो कि मैं खुद तो अपनी सगाई के लिए सज धज कर बैठ गई और अपनी दीदी पर ध्यान ही नहीं दिया। अप्पू 2 मिनट रुको तो सही, पंडित जी कुछ कह रहे हैं, कुछ चाहिए होगा उन्हें। राधिका उसे रोकने में लगी थी पर अर्पिता नहीं रुकी, उल्टा उसे आँखें दिखाते हुए बोली, और भी लोग हैं घर में और सिर्फ आप ही एक जिम्मेदार नहीं कि सारे काम का बोझ अपने सर पर उठाई घूम रही हैं। जो भी होगा वो बाकी लोग देख लेंगे, आप बस मेरे साथ चलिए। राधिका ने कोशिश तो बहुत की पर अप्पू ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे अपने साथ लेकर चली गई। बाकी सब ये देखकर मुस्कुरा दिए और जल्दी जल्दी बचे काम निपटाने लगे, क्योंकि किसी भी वक्त लड़के वाले आ सकते थे। लीजिए जाकर जल्दी से कपड़े बदल कर आइए, अप्पू ने उसके सगाई के कपड़े उसके हाथ में थमाए और बाथरूम की ओर धकेल दिया। राधिका मुंह बनाती हुई अंदर चली गई। कुछ देर बाद बाहर आई तो अप्पू ने उसे ड्रेसिंग टेबल के सामने बिठा दिया। आज आप एक अच्छी बच्ची बनकर एकदम चुपचाप बैठेंगी और मैं जो भी करूं मुझे करने देंगी। आज अगर आपने मुझे रोका तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा आपके लिए। अप्पू मैडम छोटी थी पर बड़ों पर हुक्म चला रही थी, अपनी ही बड़ी बहन को धमका रही थी। राधिका ने आंखें दिखाई पर अप्पू को कहां डरना था, वो तो अपने काम में लग चुकी थी और हमेशा सादगी से रहने वाली, मेकअप नाम की बला से दूर रहने वाली राधिका पर अपना टैलेंट आजमाने लगी थी। कुछ देर बाद हल्ला हुआ कि लड़के वाले आ गए। राधिका की धड़कनें घबराहट के मारे बढ़ गईं तो वहीं निशांत से मिलने के ख्याल से अप्पू का रंग निखर गया। अपनी समधियों के साथ मिलकर बड़ी ही गर्मजोशी से आशुतोष जी ने अपनी बेटियों के ससुराल वालों और होने वाले दामादों का स्वागत किया। सबको अंदर लाकर बिठाया गया। पहले लड़कों का दिलक होना था जहाँ लड़कियों का कोई काम नहीं था। पंडित जी पहले ही उपस्थित थे तो सभी बैठ गए। आशुतोष जी ने दोनों लड़कों को तिलक किया, उनके बाकी दोनों दामादों ने भी अपने साढ़ू भाइयों को तिलक किया। शगुन के सामान में 2 जोड़ी कपड़े, सोने की चेन, अंगूठी, घड़ी और हर छोटी बड़ी चीज चढ़ाई गई थी, कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी थी। अब सगाई की बारी आई तो दोनों लड़कियों को यहाँ लाया गया। निशांत और माधव, जिनकी निगाहें जाने कब से अपनी मोहब्बत के दीदार को प्यासी थी, जब उनकी नज़र अर्पिता और राधिका पर पड़ी तो उनके नाजुक से वजूद की खूबसूरती में इस कदर खोई कि अपना ही होश न रहा। गुलाबी रंग के लहंगे में कर्ली खुले बाल, चेहरे पर लाइट मेकअप और लाइट ज्वेलरी में अर्पिता बेहद हसीन लग रही थी। उसका प्यारा सा चेहरा अलग ही ग्लो कर रहा था, आंखें सितारों से चमक रही थीं और लबों पर बिखरे मुस्कान निशांत की धड़कनों को बेकाबू कर रही थी। सो ब्यूटिफुल, सो एलिगेंट, अर्पिता की तारीफ में यही शब्द निकले थे उसके लबों से। माधव का हाल भी उससे जुदा ना था। हमेशा सादगी से रहने वाली राधिका आज भी बहुत ही सिंपल सोबर रूप में थी, फिर भी माधव के होश उड़ाए हुए थी। राधिका ने लाइट ग्रीन एंड येलो हैवी बॉर्डर की खूबसूरत सी बनारसी साड़ी पहनी थी। बालों को खूबसूरत से जुड़े की शक्ल देकर गजरे से सजाया गया था। माथे पर छोटी सी बिंदी चमक रही थी, कानों में चांद बालियां झूल रही थी, गले में पेंडेंट डाला हुआ था, हाथ की कलाइयों में चूड़ियां भरी थी और पैरों में पाजेब थिरक रहे थे। चेहरे पर हल्का मेकअप किया गया था जिससे उसका सांवला सलोना चेहरा सोने से दमक रहा था। उन बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखों पर पलकों का पहरा लगा था जो उसकी खूबसूरती को निखार रहा था। हुस्न वालों को संवरने की जरूरत क्या है, वो तो सादगी में भी कयामत की अदा रखते हैं। ये माधव के जज्बात थे जो उसकी सादगी पर ही फिदा था और आज उसे इस रूप में देखकर अपनी पलकें तक छपकाना भूल गया था। अक्षय ने जब राधिका को शर्माते हुए धीमे कदमों से माधव की ओर बढ़ते देखा तो अनायास ही उसे अपनी सगाई का दिन याद आ गया। निगाहें राधिका के साथ चली आ रही आहाना की निगाहों से जा टकराईं। आंखों ही आंखों में कुछ बातें हुईं। आहाना ने शर्माकर अपनी निगाहें झुका ली और अक्षय अपने शर्मीले टैगोर के शर्म से गुलाबी चेहरे को देखकर मुस्कुराते हुए अपने बालों में हाथ घुमाने लगा। दोनों लड़कियों को लड़कों के पास बिठाया गया। निशांत और अर्पिता के बीच निगाहों से ही छेड़छाड़ जारी थी तो वहीं राधिका शर्माई सकुचाई हुई खुद में सिमटकर बैठी हुई थी। मजाल हो जो एक बार भी निगाहों पर लगा पलकों का पहरा हटा हो और उसने अपनी नजरें माधव पर इनायत की हों, जो बेचारा जाने कब से उसकी निगाहों के दीदार को तरस रहा था। पहले तो अनुपमा जी और जयंती जी ने अपनी अपनी होने वाली बहू को चुनरी ओढ़ाकर उन्हें शगुन का सामान दिया, जिनमें फल मेवे से लेकर कपड़े गहने और उनकी जरूरत का हर छोटा बड़ा सामान मौजूद थे। उसके बाद सगाई की रस्म शुरू हुई। माधव ने अपनी हथेली आगे बढ़ाई तो अंजलि ने झट से राधिका की हथेली को उसकी हथेली पर रख दिया। अब इससे पहले कि लड़की इनकार करे, झट से रिंग पहनाकर भाभी को अपना बना लो, कार्तिक ने शरारत से माधव को छेड़ा। जहां बेचारा माधव शर्मा गया, वहीं बाकी सब हंस पड़े। माधव ने उसकी हथेली को थामा और अपने रिश्ते की खूबसूरत सी निशानी उसके बाएं हाथ की अनामिका उंगली में सजा दी और ये खूबसूरत एहसास राधिका के दिल को गुदगुदा गया। चलिए दीदी, अब आप भी जल्दी से जीजू को रिंग पहनाइए, फिर हमारी बारी आएगी। अप्पू से जरा भी सब्र ना हुआ और उसका उतावलापन देखकर जहां बाकी सब हंस पड़े, वहीं निशांत भी मुस्कुराए बिना ना रह सका। राधिका ने हिचक के साथ निगाहें माधव की ओर उठाई। गोल्डन कलर खूबसूरत से डिजाइनर कुर्ते में आज वो भी बेहद हैंडसम लग रहा था और पिंक कलर की शर्ट पर नेवी ब्लू थ्री पीस सूट में निशांत भी अर्पिता को बराबर की टक्कर दे रहा था। माधव की निगाहों से राधिका की निगाहें टकराई तो जहां माधव मुस्कुरा दिया, वहीं राधिका ने शर्माते हुए अपनी निगाहों को एक बार फिर झुका लिया। शर्माते सकुचाते राधिका ने जैसे ही माधव को रिंग पहनाई, उन पर फूल बरसने लगे। अंजलि, कार्तिक, अहाना, अक्षय सबने उनकी खुशी में शरीक होते हुए गले लगाकर उन्हें बधाई दी, मुंह मीठा करवाया। उनके बाद सबने दूसरे चूड़े पर अलग लगा दिया। निशांत और अर्पिता ने एक दूसरे को रिंग पहनाई और एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। आज उनका रिश्ता एक कदम और आगे बढ़ गया था। बेबाक अर्पिता जराना शर्माई। निशांत ने भी सबकी नजरों से बचते हुए उसके रिंग के साथ उसकी हथेली को भी चूम लिया। उनकी जोड़ी देखकर अंतरा और अन्वय को अपना वक्त याद आ गया। दोनों जोड़ों ने सब बड़ों का आशीर्वाद लिया। बाकी सबने भी उन्हें मुबारकबाद दी। मिठाई खिलाकर उनका और बाकी सबका भी मुंह मीठा करवाया गया। फोटो वीडियो भी ली गई। यहाँ का सारा कार्यक्रम होने के बाद खाने पीने का प्रोग्राम शुरू हुआ। अन्वय और अंतरा ने दोनों जोड़ों को अलग भेज दिया था, वो भी दो अलग अलग कमरों में, ताकि कुछ वक्त एक दूसरे के साथ बिता सके। उनका खाना भी वहीं पहुंचने वाला था और बाकी सबके लिए लिविंग रूम में ही इंतजाम किया जा रहा था। कमरे में राधिका और माधव अकेले ही थे। राधिका पलके झुकाए चुप सी बैठी थी। अपनी रिंग फिंगर में मौजूद उस सोने की चमचमाती अंगूठी को देखते हुए नर्वसनेस ने अपने पैर के अंगूठे से जमीन को कुरेदने में लगी थी, जिससे उसके पैरों में मौजूद पाजेब की छमछम की मधुर आवाज उस कमरे में गूंज रही थी और माधव लबों पर गहरी मुस्कान सजाए एकटक उसे ही देख रहा था।
राधिका को अपने वजूद पर ठहरी उसकी निगाहों का भान था, शायद तभी वो ज्यादा घबरा रही थी। कुछ वक्त गुजर गया, पर जब अब भी राधिका को उसकी नज़रें खुद पर महसूस होती रहीं तो उसकी लरस्ती पलकें माधव की ओर उठ गईं और उसकी इन काजल से सनी बड़ी बड़ी आंखों की खूबसूरती देखकर माधव मंत्रमुग्ध सा हो गया। ऐसे क्या देख रहे हैं आप मुझे? राधिका की आवाज़ माधव के कानों से टकराई तो वो उसकी सुरमई निगाहों के जादू से बाहर आई और लब दिलकशी से मुस्कुरा दिए। देख नहीं रहा, सोच रहा हूँ कि अभी ही आप इतनी खूबसूरत लग रही हैं जब मैं आपकी सोनी मांग को सिंदूर से सजाकर, आपके गले में मंगलसूत्र पहनाकर, आपके अधूरे श्रृंगार को पूरा कर दूंगा, तब कितनी हसीन लगेंगी आप। आपको मैं सच में खूबसूरत लगती हूँ? राधिका ने बेहिचकिचाहट से उसे देखते हुए सवाल किया। आपके रूप की श्रृंगार की जरूरत ही नहीं, आपकी सादगी के कायल हैं हम। इस कदर हसीन लगती हैं आप हमें कि आपके प्यार में घायल हैं हम। माधव ने एक अलग, अनोखे और रुमानियत भरे अंदाज में न सिर्फ राधिका को उसके सवाल का जवाब दिया था, बल्कि उसकी आंखें राधिका की तारीफ कर रही थीं। जिस अंदाज से वो उसे निहार रहा था, राधिका के दिल की धड़कनें बढ़ गई थीं, चेहरे पर हया की लाली बिखर गई थी और पलकों की झालरों ने आंखों को खुद में समेट लिया था। शायद अब न कोई शक बचा था और न ही शक की कोई गुंजाइश थी। लगता है जवाब मिल गया आपको, माधव मुस्कुराया। राधिका ने धीरे से सर हिला दिया। माधव राधिका की ओर खिसक गया और जैसे ही उसने राधिका की हथेली को स्पर्श किया, उसके जिस्म में बिजली की तरंगे सी दौड़ गईं। हड़बड़ाते हुए उसने अपनी बड़ी बड़ी निगाहें उसकी ओर उठाईं और अपना हाथ पीछे खींचना चाहा, पर माधव ने मजबूती से उसकी हथेली को थाम लिया और उसकी उन बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखों में झांकने लगा। अब इस हाथ को थामने का हक है मेरा। माधव के शब्द राधिका के कानों से टकराए और वो एकदम स्थिर होकर बैठ गई। राधिका, आपको पता है खूबसूरती इंसान में नहीं, उसे देखने वाले की आंखों में होती है। दुनिया में हर इंसान अलग और खूबसूरत होता है। सबकी अपनी अपनी खूबियां और कमियां होती हैं। दुनिया आपको कैसे देखती है, आपके बारे में क्या सोचती है, क्या कहती है, ये उनके नज़रिए पर निर्भर करता है। पर मेरी नज़र में आप इस दुनिया की सबसे ज़्यादा खूबसूरत और हसीन लड़की हैं। आपसे बढ़कर और कोई नहीं। आप कुछ नहीं भी करती हैं तब भी मेरी नज़रें सिर्फ आप पर ठहरती हैं, और आज तो मेरे लिए आप पर से नज़रें हटा पाना मुमकिन नहीं हो रहा। अब भी कोई शक है आपको? राधिका ने धीरे से इनकार में सर हिला दिया, पर लबों से एक शब्द नहीं निकला। राधिका, आज आप इतनी चुप क्यों हैं? माधव का सवाल सुनकर राधिका ने नज़रें उसकी ओर उठाई, पल्लव अब भी खामोश ही रहे। माधव ने ही आगे कहा, चलिए और कुछ नहीं कहना चाहती तो यही बता दीजिए कि आपको इस वक्त कैसा लग रहा है, आप कैसा महसूस कर रही हैं। माधव ने बड़े ही प्यार से आग्रह किया था। राधिका जरा हिचकिचाई, पल भर कुछ सोचा, फिर माधव की प्यार की गहराइयों में उतरते हुए हौले से मुस्कुरा दी। लफ्जों में मोहब्बत बयां करने की कला से हम अनजान हैं, तुझसे हमें जो बांधे उन एहसासों का हमें भान है। अपनी पसंद पर आज भी हमें बहुत मान है, अब तो सनम तुझसे ही हमारी पहचान है। उफ, क्या जवाब दिया था उसने। माधव लाजवाब सा एक टक उसे निहारने लगा था। टू बी कंटिन्यूड। चलिए जी, थोड़ी तारीफ आप भी कर दीजिए, हमारी लड़की बड़ी परेशान है।